नमस्कार मित्रों, स्वागत है तुम सबका रेडियो मधुबन के कार्यक्रम पठामी संस्कृतम में। मैं लीना मेहंदले आपसे बात कर रही हूँ और तुम सब अब मेरे साथ पढ़ने वाले हो संस्कृत। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सम्मुख संस्कृत भाषा का एक ऐसा आयाम दिखाने वाली हूँ जो किसी अन्य भाषा में नहीं है, केवल तुम्हें यह भारतीय भाषाओं में मिलेगा। इसे कहेंगे समास। मुझे लगता है कि 8वीं, 9वीं या 10वीं कक्षा में तुम्हें समास पढ़ाया जाता है, तो संभव है कि अभी तुमने इसे नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी इसका आनंद तुम आज के पाठ में जरूर उठा सकते हो। मित्रों, पठामी संस्कृतम की एक पुरानी कड़ी में हम लोग संधि के बाबत सीख चुके हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों यदि अनुकूल हों तो उन दो शब्दों की संधि की जा सकती है। और जब हमें संधि की व्याख्या करने के लिए उसे खोल करके बताना होता है तो हम कहते हैं संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। जैसे त्वम और एव शब्द को जोड़ करके नया शब्द हमने बनाया त्वमेव। इसी प्रकार सु और आगतम शब्द जोड़ करके हमने बनाया स्वागतम। गण अधिक ईश जोड़ने से बना गणेश। महा अधिक ऋषि जोड़ने से बना महर्षि। वन अधिक औषधि जोड़ने से बना वनौषधि। और जब हम वनौषधि की व्याख्या करेंगे कि वन अधिक औषधि, तो हम कहेंगे कि हमने वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद करके बताया कि किन दो शब्दों की संधि यहाँ पर हो रही है। ये जो नियम संस्कृत में है, यही नियम हिंदी के लिए भी है, इसलिए तुम अगर दोनों को एक साथ पढ़ो तो ये पढ़ाई और भी सरल हो जाती है। तो मित्रों, जब हम संधि के लिए शब्दों को जोड़ते हैं तो वह जोड़ बहुत ही सरल होता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत विशेष रूप से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ सकते हैं किसी विशेष नियम के अनुसार, और ऐसे जोड़ को हम समास कहते हैं। यह समास सामान्य संधि से थोड़ा अलग, थोड़ा विशेष होता है। जैसे अगर हमें कहना हो शिवस्य और धनुष्यः, ये दो शब्द जोड़ करके हम बनाते हैं शिव धनुष्यः, तो यहाँ पर हमने स्य अक्षर का लोप कर दिया है और इस प्रकार यह नया शब्द गढ़ा है शिव धनुष्यः। हिंदी में भी अगर हमें कहना हो शिव का और धनुष्य, तो हम बीच में का अक्षर का लोप करके कहेंगे शिव धनुष्य। तो यहाँ तुमने देखा कि संधि के नियम से अलग किसी और नियम के अंतर्गत हमने ये दो शब्द जोड़े हैं। तो ऐसा जब जोड़ हम करते हैं तो इस नए शब्द को हम कहते हैं सामासिक शब्द, और हमारी यह प्रक्रिया जो है यह समास बनाने की प्रक्रिया है। और इसी प्रकार जो कोई सामासिक शब्द हमारे सामने आता है, जैसे शिव धनुष्य, तो जब हम उसको खोल करके उसकी व्याख्या करने जाते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। दसवीं की CBSE की पुस्तक में समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पुस्तक का आलय पुस्तकालय, परलोक को गमन करना परलोक गमन, जैसी मति है वैसा यथामति, इस प्रकार कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ उदाहरण हम और देखेंगे, कमल के समान सुंदर नयन तो कमल नयन, चंद्र के समान सुंदर मुख तो चंद्रमुख, पतितों को पावन करने वाले पतित पावन, हरि का द्वार हरिद्वार, राम एवं कृष्ण तो राम कृष्ण। मित्रों, मेरे स्कूल के दिनों में जब हमें यह समास वाला पाठ पहली बार पढ़ा रहे थे तो मैं चकित हो रही थी कि एक इतना छोटा शब्द है समास, लेकिन वो पाठ बहुत लंबा, बहुत विस्तार से हमें पढ़ाया गया था। तब मैंने देखा कि कितनी सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों के भेद को लेकर के नियम बने हैं और एक सुंदर नियमों का समूह बना है जिनके द्वारा हम समास के विषय में पढ़ सकते हैं। और जब पाठ के अंत में हम बहुव्रीहि समास पर आए तब तो मैं बिल्कुल अभिभूत हो गई। क्यों, यह तुम्हें भी पता चलेगा। बहुव्रीहि समास को पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे अचानक कोई सुंदर चित्र सामने आ गया हो या कोई सुंदर कल्पना सामने आ जाए। कुछ ऐसी ही खुशी तब भी होती है। अब समास में चूंकि कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है, इसलिए समास की चार श्रेणियां की गई हैं। जब पहला शब्द प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जब दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जब दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास को अन्य पद प्रधान समास भी कहा जाता है, क्योंकि इस समास में जिन दो शब्दों का उपयोग होता है उन दो शब्दों से अन्य किसी तीसरी ही बात की तरफ इंगित किया जाता है। इस प्रकार समास की चार श्रेणियां हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप हम यह शब्द देखेंगे, पीतांबर। इसका अर्थ हुआ पीला वस्त्र, परंतु हम इसका विशेष अर्थ लगाते हैं, जो बहुधा पीले वस्त्र धारण किया करता है ऐसे श्री कृष्ण के लिए हम पीतांबर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शनैश्चर शब्द का सरल अर्थ होगा धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन विशेष रूप से हमने यह नाम उस ग्रह के लिए दिया है जो आकाश में बहुत धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात शनि ग्रह। इस प्रकार बहुव्रीहि समास न केवल भाषा के चमत्कार और अलंकार को बढ़ाता है वरन भाषा में एक गूढ़ता भी निर्माण करता है। बहुव्रीहि समास के अर्थ प्रायः हमारे संचित ज्ञान के आधार पर ही टिके होते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि शब्दों से हमें हमारी संस्कृति की पहचान होती है। जैसे हम कहते हैं गरुड़ ध्वज, यहाँ दो पद हैं गरुड़ और ध्वज, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ हम लगाते हैं कि गरुड़ है जिसका ध्वज वह, अर्थात विष्णु। यस्य ध्वजायाम गरुड़ चिन्हः अस्ति सः गरुड़ ध्वजः। इसी प्रकार यस्य ध्वजायाम कपि तिष्ठति सः कपि ध्वजः, अर्थात अर्जुन। तो कपिध्वज का अर्थ जब हम कहते हैं कि अर्जुन है, तो यह अर्थ जानने के लिए या यह अर्थ समझने के लिए हमें वह कहानी भी मालूम होनी चाहिए कि क्यों और किस प्रकार हनुमान जी ने अर्जुन के साथ यह स्वीकार किया कि वे उसके रथ पर ध्वजा के रूप में बैठा करेंगे। जब तक हम इस कहानी को नहीं जानेंगे तब तक हमें कपिध्वज शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार मित्रों तुमने देखा कि बहुव्रीहि समास हमारी सांस्कृतिक धरोहर को विशेष रूप से हमसे परिचय कराता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस समास का महत्व सबसे अधिक है। तो चलो आज का पठामी संस्कृतम का कार्यक्रम इसी चमत्कारी बहुव्रीहि समास के साथ हम समाप्त करते हैं। तुम अगले पाठ के लिए एक होमवर्क अर्थात तुम स्वयं का एक पाठ करके रखना कि अगले रविवार तक तुम ऐसे कम से कम 20 शब्द चुन के रखना जो तुम्हें पता है कि ये बहुव्रीहि समास के शब्द हैं। और वैसे मैं भी अगली कड़ी में तुम्हें कम से कम 20 तो बहुव्रीहि शब्दों को जरूर बताऊंगी और उनसे जुड़ी हुई कहानियां भी मैं बताऊंगी। तो बस इसी बात के साथ हम आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुनः एक बार नमस्कार। शुभम भूयात। लगे रहो पठामी संस्कृतम में।